हरे कृष्णा। तो आज राधा विनोद को यहाँ आए हुए कितने साल हुए इस घर में? दस साल हो गए। तो आज 11वां साल शुरू हो रहा है। आप में से कितने 10 साल खड़े हैं? ज्यादा है ना? 10 साल या 5 साल, 6 साल? अच्छा, तो ये 10 साल में भगवान काफी बड़े हो गए हैं। जब आप विग्रह को देखते हैं तब एक चीज या कई चीजें आप देख पाएंगे। एक तो है कि बहुत सुंदर है, ये तो सबसे पहले ही दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, हर बार जब आप यहाँ आते हैं, राधा विनोद जी का दर्शन करते हैं या मंदिर में जाते हैं, राधा गोकुल आनंद का दर्शन करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? कभी आपको दिखाई पड़ रहा है कि कभी कृष्ण बैठे हुए हैं, कभी सोए हुए हैं, कभी शतरंज खेल रहे हैं, या कैसे दिखाई पड़ते हैं कृष्ण? क्या कर रहे होते हैं जब आप कृष्ण का दर्शन करते हैं? तो बांसुरी बजा रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं? खड़े होते हैं, बस एक ही मुद्रा में एक ही तरह से खड़े हुए होते हैं, बस खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। त्रिभंग ललित आज बैठे हुए थे, लेकिन खड़े होकर बैठे थे। तो जब भी हम दर्शन करते हैं मंदिर में भगवान का जाकर, भगवान मंदिर के अंदर जाकर, तो हम देखते हैं कि भगवान सदैव खड़े हुए होते हैं, बांसुरी बजा रहे होते हैं, श्रीमती राधा रानी के साथ में ऐसे खड़े हैं। तो सोचे जरा कि भगवान क्यों ऐसे हमेशा खड़े रहते हैं? अभी हम लोग एक स्थान में बैठ भी नहीं सकते, एक स्थान में खड़े नहीं हो सकते, अभी बैठे बैठे भी हम लोग हिलते रहते हैं, है ना? हाथ हिलते हैं, सर हिलता है, पीठ हिलता है, पैर हिलते हैं। एक स्थान में कभी खड़े हो सकते हैं? एक स्थान में बैठ सकते हैं? लेकिन राधा विनोद तो 10 साल से खड़े हैं। कभी देखा है आपने कि वो कुछ कहीं और दूसरा कुछ कर रहे हैं? खड़े हैं, वैसे के वैसे खड़े हैं। उसी प्रकार राधा गोकुल आनंद, कितने साल हुए राधा गोकुल आनंद को आए हुए? 20 साल हुए। 18 साल। तो 18 साल में कभी आपने देखा है कि राधा गोकुल आनंद बैठे हुए हैं या कुछ और कर रहे हैं? राधा गोकुल आनंद भी और मैं गोकुल आनंद वैसे खड़े हैं, त्रिभंग ललित और बांसुरी बजा रहे हैं। क्यों क्यों ऐसे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे? एक ही स्थान में है, ऐसे लगता है बड़े शांत हैं, बहुत धीरज है इनके पास। किस बात के लिए धीरज? वो कह रहे हैं, राह देख रहा हूँ तुम्हारी, कब आओगे? ये मेरे बच्चे, मेरे भक्त, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ तुमको बुलाने के लिए। बांसुरी की तान जो है इसलिए बजा रहा हूँ मेरे भक्तों को आकर्षित करने के लिए। जब भगवान कृष्ण वंशी वट में गए तो उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, और फिर क्या हुआ? सारे गोपियां दौड़ के चली आई। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मीलितस। जब एक गोपी दूसरे गोपी को कहती है कि जब हम कुरुक्षेत्र में मिले थे श्री कृष्ण से, तो उस समय क्या हुआ? तदा स राधा, वही राधा थी वहां पर और कृष्ण भी वही थे, परंतु वो ध्यान हमें अच्छा नहीं लगा, वो दृश्य हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ कृष्ण अपने ठाट से आए हैं, उनके पास नौकर चाकर हैं, उनके पास इनोवा गाड़ी है, टाटा सुजुकी सब गाड़ियां हैं, रथ में बैठे हैं। हम किस कृष्ण को देखना चाहते हैं? वो कृष्ण जो पंचम मुरली बजा रहे, पंचम जुषे पांचवी मुरली का तान बजा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण मुरली बजाकर जब वंशी वट में खड़े होते थे तो सारी गोपियां आकृष्ट हो जाती थी और सबको छोड़कर चली आती थी। तीन चार साल पहले हम लोग वेणु गीत की चर्चा कर रहे थे और सुखदेव गोस्वामी उस वेणु गीत में बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण की बांसुरी के तान से सारे ब्रजवासी आकर्षित होते थे। ब्रजवासी मतलब केवल पुरुष और स्त्री नहीं, केवल मनुष्य नहीं, वहाँ के पंछी, वहाँ के वृक्ष, वहाँ के पौधे, वहाँ के पशु जैसे गाय हैं, मृग हैं, सब आकर्षित होते थे। और फिर वो अपने अपने तरह से अपने अपनी भाषा में वो अपना प्रेम व्यक्त करते थे। और सबसे अधिक तो अधिक आकर्षण जो अनुभव हुआ वो गोपियों को था। तो इस प्रकार से कृष्ण भगवान बांसुरी बजाकर भक्तों को आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से मंदिर के अंदर सिंहासन के ऊपर स्थित होकर भगवान भी बांसुरी बजाते हैं। किस लिए बजाते हैं? हम सबको आकर्षित करने के लिए। और अब बुला रहे हमको, चलो आओ 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 मेरे पास। और हजारों हजारों सालों से, लाखों करोड़ों जन्मों से श्री कृष्ण ऐसे के ऐसे खड़े बांसुरी बजाते हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा, ये जो जीव है, ये कब आएगा मेरे पास, कब आएगा? मैं तो इसके साथ हूँ, अनादि काल से इस जीव के साथ हूँ। ये जीव तो अनादि काल से मुझे भूल कर इस बहुत भौतिक जगत में एक के बाद एक भौतिक शरीर धारण करके घूम रहा है, अपने आप को खो बैठा है। ये उसको पता नहीं कैसे, कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं। जैसे एक व्यक्ति कोई घने जंगल के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर उसको पता ही नहीं चलता कि अंदर आने का रास्ता कौन सा है, बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। आप कभी कोई घने जंगल में गए हैं जो बहुत बड़ा है? अरे हमारी बात तो क्या है, कृष्ण और सुदामा जब जंगल में गए थे वो भी रास्ता खो गए थे और बारिश हो गई और उनको पता नहीं चला कैसे निकलना, फिर अगले दिन सुबह को किसी न किसी तरह से वो निकल पड़े। तो घने जंगल में जब आदमी प्रवेश कर देता है तो कभी कभी वो रास्ता भूल जाता है कि रास्ता कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आसमान दिखाई नहीं पड़ता, सूरज चांद दिखाई नहीं पड़ते। अगर आसमान से भी दिशा जान लेना है तो वो भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आसमान तो दिखाई नहीं पड़ता, अंदर इतना अंधकार होता है, सब जगह पेड़ पेड़ ही पेड़ है। इस तरफ जाए तो वैसे लगता है कि हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन दूर दूर जाने के बाद ही पता लगता है कि कुछ शहर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर उस तरफ जाते हैं, उस तरफ भी ऐसे ही लगता है। ठीक उसी प्रकार से रेगिस्तान में भी ऐसे हैं। रेगिस्तान में, खुले रेगिस्तान में आदमी मीलों मील चलते रहे, उसे पता नहीं चलेगा कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार से समुद्र में जब नौका चल रहा होता है तो नौका चलते 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 कभी पता नहीं होता कि जमीन कब आएगा। दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक भले जहाज चलता रहे पानी के ऊपर, कभी कभी ऐसे होता है कि जमीन नजर ही नहीं आती। तो जब तक व्यक्ति बहुत प्रवीण न हो नौका चलाने में और आसमान से दिशा निकालने में, तब तक वो तो भटकता रहेगा जल के ऊपर, कभी ऐसे जाएगा कभी वैसे जाएगा। सही ज्ञान न हो तो 400-500 साल पहले यूरोप में ये लोग समझते थे कि पृथ्वी का आकार जो है वो गोल नहीं है बल्कि वो चौकोना है। चौकोना बोलते हैं ना, چوکوں میں, اور وہ سوچتے تھے, ڈرتے تھے ہوا جا وہ پانی کے میں جہاز چلانے کے لیے, کیونکہ سوچتے تھے کبھی پرتھوی کا انت آ گیا, وہ نیچے گر گیا تو کیا ہو جائے گا. اس لیے نوکا چلانے میں بہت ڈرتے تھے لوگ. لیکن ایسے تھوڑے ساہسی لوگ تھے جیسے کرسٹوفر کولمبس, واسکو دا گاما, یہ نکل پڑے. اور یہ واسکو دا گاما نکلے کہاں کے لیے تھے؟ اپنے دیش سے نکلے, اسپین سے. کہاں کے لیے نکلے تھے؟ امریکہ. پہنچے کہاں؟ بھارت. ابھی آپ کے اسکول کے بھوگول کو یاد ہوگا نا, امریکہ کہاں اور بھارت کہاں, امریکہ یوروپ کے درشٹی کون سے. تو چلے تھے امریکہ کے لیے, پہنچے یہاں, مطلب ان کو بھی پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں جا رہے, بس جا رہے ہیں, جہاز چل رہی ہے, پانی ہے, ہوا ہے, چل رہے ہیں. اور دوسرے بھی تھے, وہ کہاں کے لیے نکلے؟ کہیں اور پہنچ گئے. اور ایک ویکتی ان بھارت آنا چاہتے تھے, امریکہ پہنچ گئے. ان کا نام تھا امیرگو ویسپوچی, ان کے پیچھے پھر امریکہ دیش کا نام پڑ گیا. تو اسی لیے بھوتک جگت کی تلنا ان تینوں چیزوں سے کی گئی ہے, جنگل سے, ریگستان سے اور سمندر سے. کیونکہ یہاں ایک بار ویکتی چلنے لگتا ہے, پرویش کرنے لگتا ہے, تو اپنا راستہ پوری طرح سے کھو بیٹھتا ہے. اسے پتا نہیں ہوتا کہ میں اندر پرویش میں نے کیا کیسے, اور یہ پتا نہیں ہوتا کہ باہر نکلنا کیسے ہے. اور اگر ڈھونڈنے کے لیے چاہے بھی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیچارہ اتنا تھک جاتا ہے, سوچتا ہے چلو باہر کی بات چھوڑو, اب جنگل میں ہی رہو نا اچھی طرح سے, یہاں تو پھل پھول مل رہے ہیں, کھا کے جیو اور آرام کرو. پھر جنگل میں منگل کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ایسے منگل کبھی ہوتا نہیں. ٹھیک اسی پرکار سے جیو نہ جانے کب اس بھوتک جگت میں آ کر گر پڑا ہے, اور یہاں اندر آنے کے بعد اب جیو نانا یونیوں میں بھرمن کرتا ہے, اور اسے پتا نہیں چلتا ہے کہ کتنے سال ہوئے مجھے یہاں آ کر, کتنے سال میں یہاں رہوں گا, میں کیا کر رہا ہوں, میں کون ہوں. کچھ جیو کو پتا نہیں ہوتا ہے. جیو ایک شریر دھارن کرتا ہے اور اسی شریر کو ستیہ مانتا ہے, اور اسی کو سب کچھ مان لیتا ہے, اور پھر اس شریر کو تیاگ کے دوسرا شریر دھارن کرتا ہے, اس دوسرے شریر کو سب کچھ مان لیتا ہے, پچھلے شریر کو بھول جاتا ہے, اور یہ دوسرا شریر سب کچھ ہے, یہ میرا سروسو ہے, ایسے مان لیتا ہے. اور یہ شریر میں جو ہمارے سمبندھ ہیں یہی سب کچھ ہے, یہ میرے ماتا پتا, یہ میرے بچے, بھائی بہن, میرے متر, میرے شترو, انہیں کو سروسو مان لیتا ہے. یہ تیسرا شریر, تیسرا شریر جب دھارن کرتا ہے تو پہلے دو شریر بھول جاتا ہے جیو, اور تیسرے شریر کو ہی سب کچھ مان لیتا ہے. اس پرکار سے ہر ایک جنم میں یہی چلتے آتا ہے, اور جیو پوری طرح سے بھٹک جاتا ہے, اپنے ادیش کو بھول جاتا ہے, یہ جانتا نہیں کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, اور کس پرکار سے میں بھرمت ہو گیا ہوں, وہ نہیں جانتا ہے. جیسے ویکتی جب جنگل میں جاتا ہے تو پوری طرح سے بھٹک جاتا ہے, اس کو کچھ پتا نہیں چلتا. اور ایسے جنگل میں جب تک کوئی ویکتی ہمیں ملے نہیں جو اچھی طرح سے راستہ جانے, ہم اندر ہی اندر چلے رہیں گے. بھگوان شری کرشن بھگوت گیتا کے بچوں کو کرپیا باہر بھیجیے. تو روپا جی بول رہے ہیں, شکشن کو یاد دلا رہے ہیں, دیکھیے جنگل کے باہر نکلو, جنگل سے باہر نکلو. ہم نے کہا نا جب تک یہ سادھو نہیں ملتے, جب تک کوئی ویکتی نہیں ملتا جنگل سے مارگ نکالنے کے لیے جس کو پتا ہوتا ہے, جب تک وہ بولتا نہیں ہے, بتاتا نہیں راستہ, ہمیں پتا نہیں چلتا. تم کہہ رہے تھے جیسے جب تک ایک ویکتی نہیں ملتا تو پروبھا جی بولنے لگے کہ ہاں میں آیا ہوں نا راستہ دکھانے کے لیے, اور یہ راستہ ہرے کرشن مہامنتر کا جپ کرو, اس لیے پروبھا جی کو جپ کر رہے تھے. بھگوت گیتا کے 15ویں ادھیائے میں بھگوان شری کرشن کہتے ہیں ऊर्ध मूलम अनुशाख अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। और इस भौतिक जगत की तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं और वो कहते हैं कि ये वृक्ष जो है बहुत विशाल है और इतना विशाल है कि कहां इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसका अंत कहां होता है हम कह नहीं सकते। और ये अव्यय होने के बावजूद इसके जो मूल हैं वो ऊर्ध ऊपर हैं, ऊर्ध मूलम, और शाखाएं अधर है नीचे हैं। अभी वास्तव में जब हम कोई वृक्ष देखते हैं तो वृक्ष के जड़ नीचे होते हैं और शाखाएं ऊपर होती हैं। लेकिन जिस वृक्ष का वर्णन भगवान कृष्ण कर रहे हैं इस 15 अध्याय में वो उल्टा है बिल्कुल। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये भौतिक जगत एक उल्टे वृक्ष के समान है, अश्वत्थ वृक्ष के समान, और इसके जड़ जो है, इसके मूल जो ऊपर है अर्थात ब्रह्मलोक, जहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं जो सृष्टि करता है, और नीचे जितने भी शाखाएं हैं वो सब अलग अलग लोक हैं, जैसे पृथ्वी लोक, जन लोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, अतल वितल सुतल लोक, ये सारे लोक, और ये सारे फैले हुए हैं इस भौतिक जगत के भीतर। और जीव कभी इस लोक में कभी उस लोक में घूमते रहता है, घूमते रहता है। और ये अश्वत्थ वृक्ष का बंधन जो है ये बहुत कठोर है, इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, दुरत्यया। जब कोई तोड़ने का प्रयास करता है तो वो भ्रमित हो जाता है। जैसे एक मक्खी जब मकड़ी के जाल में अटक जाता है, अटक जाती है, उस समय वो संघर्ष करने लगती है। जितना वो संघर्ष करती है उतना ही ज्यादा सख्ती से वो अटक जाती है अंदर, और फिर मक्खी वो मकड़ी आके उसको पकड़ लेती है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ संघर्ष करते हैं भौतिक जगत में और सोचते हैं कि संघर्ष करने से हमारे समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, हम सुख की प्राप्ति कर पाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमारा बंधन और भी कठोर बन जाता है, और भी सख्त बन जाता है। केवल जब तक कोई व्यक्ति आके हमारे बंधन को काटे नहीं, जब तक कि उस मक्खी के बंधन को बाहर से आके कोई काटे नहीं, तब तक वो वहीं पर है। तो हमें चाहिए कि हम भी भक्तों का आश्रय लेकर, गुरुजनों का आश्रय लेकर हम इस भव बंधन को काटें और कृष्ण के पास वापस चले जाएं। कृष्ण ने रास्ता दिखलाने के लिए कई साधन बनाए हमारे लिए, उन्होंने गीता भागवत जैसे ग्रंथ दिए हैं, उन्होंने हरि नाम दिया हुआ है, उन्होंने प्रभुपाद जैसे साधुओं को भेजा हुआ है हम सबको याद दिलाने के लिए, जागो जागो। और स्वयं श्री कृष्ण भी अर्चक विग्रह के रूप में प्रकट होकर हमें याद दिलाते हैं, आओ आओ आओ। तो ये है तात्पर्य कृष्ण के खड़े होकर बांसुरी बजाने का मंदिर में। इस भवबंधन से, इस जंगल, इस बहुत जंगल रूपी भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए कृष्ण वहां पर विराजमान है और अपने मुरली के मधुर तान से हमारा मन आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि आओ और देखिए कृष्ण का धीरज। कृष्ण हमारा साथ कभी छोड़ते नहीं है। है ऐसे कोई मित्र हमारे पास, है कोई ऐसे संबंधी हमारे साथ? अगर हम किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं तो कब तक हमारे साथ देगा? थोड़ा सहन करेगा और थोड़ा सहन करेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब माता पिता भी अपने बच्चों को कहेंगे या बच्चे भी अपने माता पिता को कहेंगे हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं। आजकल दुनिया में ऐसा होता है, जब किसी सीमा से बाहर बात चली जाती है तो निकट के संबंधियों के बीच में भी ऐसे वातावरण निर्माण हो जाता है कि संबंध पूरे बिगड़ जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, कहते आप निकल जाओ यहाँ से, तो ऐसे संबंध बहुत ही बिगड़ जाते हैं। हालांकि पास का संबंध है, बहुत निकट का है, फिर भी द्वेष निर्माण हो जाता है और एक संबंधी दूसरे का साथ छोड़ देता है। मित्र शत्रु बन जाते हैं। परंतु क्या हमने कभी श्री कृष्ण के साथ ऐसे देखा है बर्ताव? श्री कृष्ण ने कभी ऐसे बताया कि इस जीव के संग में नहीं जाऊंगा, इस जीव के इस प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में नहीं मैं रहूंगा, क्योंकि ये नास्तिक है, ये बहुत पापी है, ये मेरे अस्तित्व को ही नकारता है, तो ऐसे जीव के साथ में रहूंगा नहीं। कितने करोड़ों सालों से मैं कहते आयो मेरे पास आओ मेरे पास आओ, सुनी नहीं रहा है, तो मैं क्यों जाऊं उसके साथ में, जाने दो उसको, ऐसा भगवान कहते हैं कभी नहीं। हालांकि हम भगवान को ठुकराते आए हैं, भगवान के आदेश का पालन नहीं करते आए हैं, फिर भी भगवान साथ नहीं छोड़ते। ये है भगवान की असीम करुणा, उनकी कृपा कि किसी भी हालत में वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। हालांकि हम पूरी तरह से उनको भूल जाते हैं, अब पशु योनि में कीड़े की योनि में जीव कैसे भगवान का स्मरण कर सकेगा, और मनुष्य योनि प्राप्त करके भी ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, वो भी पशु तुल्य जीवन बिताते हैं, फिर भी भगवान साथ नहीं छोड़ते। हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो हमें भगवान की मुरली की आवाज सुननी चाहिए। भगवान इंतजार कर रहे हैं, हमें थोड़ा तो कुछ सोचना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए बाहर राह देख रहा है, हमें कहीं जाना है और वो राह देख रहा है बाहर, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 मिनट, 2 घंटे, 5 घंटे, हम सोचेंगे ना भाई इतने समय से राह देख रहा है, चलो जाना तो चाहिए। अभी हमारे लिए कोई 5 किलोमीटर रात देखेगा आके हम याद लगा रहे देखो मैं रात देख रहा हूँ जल्दी करो, लेकिन भगवान कितना धीरज रख के शांति से खड़े हैं। आज नहीं तो कल ये बच्चा मेरे पास आएगा 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 आएगा, फिर जीवन अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, दूसरा जीवन, दूसरे जीवन में भी पहले के कई साल तो ऐसे बीत जाते हैं जानने के लिए ये क्या है, ये अ है, आ है, ये गाड़ी है, ये भोजन है, ये है, वो है, फिर बड़े बड़े होते 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 ऐसे समय बीत जाता है, फिर अंत आ जाता है। और कृष्ण वही के वही है, बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं, आओ मेरे पास आओ, लेकिन हम सुन नहीं रहे। ऐसे गुण किन में पाया जाता है? केवल भगवान में। और भगवान करोड़ों 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 जन्मों से खड़े हैं बस एक ही जगह में, आओ आओ आओ, फिर भी हम नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, जिद्दी हैं, जिद करके हम नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी भगवान नाराज नहीं होते हैं, फिर भी आते हैं बार बार, आओ फिर भी बुलाते हैं, और वापस ले जाने के लिए और भी हर हर जन्म में साधन देते रहते हैं, देते रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में जीव क्या है? भगवान के नालायक बच्चे हैं। इतना कुछ भगवान करना चाहते हैं जीव के लिए, लेकिन जीव सुनना नहीं चाहते, जिद्दी है जीव, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे भगवान के पास, फिर भी भगवान नाराज नहीं होते। ठीक है ठीक है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ऐसे कह के कितने लाखों जन्म बीत गए। तो अभी जब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, थोड़ा तो बुरा लगना चाहिए ना हमको, ये कब से राह देख रहे हैं भगवान, अभी तो कम से कम जाना चाहिए ना, अभी तो उनको इंतजार करके रुकाना नहीं चाहिए, ये सभ्य व्यवहार नहीं है। तो भगवान से कहेंगे हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आपके चरणों में आ गए हम, आपकी सहनशीलता की परीक्षा और नहीं लेंगे। हालांकि भगवान की सहनशीलता का कोई सिक्की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भगवान के सामने जाकर कहना चाहिए कि अभी आपको रुक पाएंगे नहीं, हम आ गए, हम पहुंच गए आपके द्वार, अभी आपके द्वार पर पहुंचे हैं, अभी छोड़ेंगे नहीं कभी। ये निष्ठा होनी चाहिए हमारे अंदर, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम इतने मूर्ख थे, इतने लाखों जन्मों से आप हमारे साथ में, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं किया आपकी, अभी हम आपके चरणों का आश्रय लिए हैं, अभी छोड़ेंगे नहीं। महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं एक पंछी हूँ जो कि एक जहाज के ऊपर है जो कि बीच समुद्र में है। मतलब ये पंछी तो आप जानते हैं, ये तो समुद्र में भी उड़ते रहते हैं कभी, लेकिन कहाँ तक उड़ेंगे, उनकी भी उड़ने की सीमा होती है ना। कोई 2 मील जाएगा समुद्र के अंदर, कोई 5 मील जाएगा, कोई 10 मील जाएगा, 50 मील जाएगा, लेकिन 200 मील, 500 मील, 1000, 2000 मील तो जाना मुश्किल है किसी पंछी के लिए। तो ऐसे एक पंछी मैं हूँ, कुलशेखर महाराज के आने मैं इस नौके के ऊपर बैठा हूँ। और नौके के ऊपर आपने देखा होगा कि झंडा लगाया जाता है, उसके झंडे के ऊपर झंडे के लिए कोई डंडा होता है। तो पंछी जो होती है उसको तो कोई स्थान चाहिए, तो झंडे के ऊपर बैठ जाती है। और कुलशेखर कहते हैं कि मैं ऐसा पंछी हूँ जिसने उस नौके को त्याग दिया बीच समुन्द्र में, और उस झंडे को त्याग कर मैं कहीं उड़ने लगा, और उड़ने के बाद मुझे कहाँ आना पड़ा, वापस कहाँ आना पड़ा, उसी झंडे के ऊपर आना पड़ा। क्यों? उड़ा उड़ा बहुत उड़ा 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 10 मील, 15 मील, 20 मील, फिर क्या होने लगे, थकने लगे। थकने के बाद आराम करने की इच्छा है, तो समुद्र में कोई आराम है, पानी में जाके पंछी आराम कर सकता है, नहीं, कहाँ जाएगा फिर, और कोई रास्ता नहीं है। अब तो पूरी तरह से थक गए, चलो जल्दी सही, यही सही होगा, चलो वापस जाओ, वहाँ नौके के ऊपर झंडा, झंडे के ऊपर से बैठ जाए। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं कि उसी प्रकार से मैं भवसागर में खो गया हूँ। मैंने सोचा कि आपके बिना मैं रह सकता हूँ, आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़कर मैं उड़ रहा हूँ। उड़ने लगा कभी इस योनि में, उस योनि में, इस योनि में, इस योनि में भोग करते हुए मेरा प्रभुत्व जमाने की कोशिश में, लेकिन अब थक गया हूँ। मैं कहा जा सकता हूँ भौतिक जगत में, आपके आश्रय को छोड़ दिया, स्वतंत्र होने की इच्छा मैंने रखी, बहुत प्रयास किया, लेकिन अब थक गया हूँ, अब कहाँ जा सकता हूँ, आपके चरण में वापस आना ही आना है। जैसे उस पंछी को बीच समुन्द्र में उस नौके के ऊपर झंडा, उसके ऊपर आना ही आना है। तो मेरी ये दशा है हे प्रभु। उसी प्रकार से जो विग्रह के सामने जाते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कुलशेखर महाराज की तरह। मैं भी वो पंछी हूँ, बहुत समय से मैंने स्वतंत्र जीवन जिया है, आपको छोड़कर मैं भी उस पंछी की तरह उड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता गया, कभी यहाँ भोग किया, कभी वहां भोग किया, अब मैंने इन सारे आश्रयों को छोड़ दिया है, और मैं केवल अभी आपके शरण में आना चाहता हूँ। आप बांसुरी देकर बुला रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि हाँ बोल रहे हैं, लेकिन सुनाई दे रहा है, सुना नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है, आपको पता नहीं, क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, क्या भगवान बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, कि केवल ऐसे बांसुरी लगा के रखा है, नहीं बजा रहे हैं, ऐसे है, ये तो साक्षात भगवान है, साक्षात बांसुरी बजा रहे हैं, मुरली की तान हो रही है, बज रही है, परंतु हमारे अंदर वो रेडियो हमने गलत जगह ट्यून करके रखा हुआ है, चैनल गलत हमने टीवी में लगा रखा है, हृदय के टीवी में, इसलिए भगवान की मुरली की तान नहीं सुनाई पड़ती है। अलग 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 जो संसार के तान है, जो धुन है, वो हमें सुनाई पड़ते हैं, संसार की बातें। टीवी में कई चैनल होते हैं ना, जो आपको किसी चैनल में देखना होता है, बटन घुमाना होता है, और विशेष चीज को आपको वही उसी चैनल में मिल जाएगा। तो क्यों कि ठीक उसी प्रकार से अगर हमें भगवान की मुरली की तान सुननी है, तो हमें हमारे हृदय का चैनल जो है उस नंबर पे लगा के रखना चाहिए। वो चैनल कौन सा है, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
और वहीं पर रखना है। लोग क्या करते हैं, टीवी चैनल के टीवी के सामने बैठते हैं, टक 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 घुमाते रहते हैं, दो मिनट यहाँ देखा, दो मिनट दूसरा चैनल देखा, तीन मिनट तीसरा चैनल देखा। लेकिन ऐसे हम भी ऐसे घुमाते रहेंगे, आज हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, दूसरे क्षण हम कुछ दूसरा कुछ मंत्र बोल रहे हैं, तीसरे क्षण कुछ और कोई बात कर रहे हैं, तो फिर भगवान की मुरली की आवाज कैसे सुनाई देगी। अगर बारम्बार हम जप करते रहे, अपने आप को कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से केंद्रित रखे, तो भगवान की आवाज, भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। उसी चैनल में बनाए रखना है अपने को, अभी दूसरे चैनल में नहीं जाना है टीवी के, उसी में स्थिर रखना है, अर्थात सदैव कृष्ण भावना में रहना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है अपने भक्ति की क्रियाओं से, भजन क्रिया। फिर धीरे 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 से हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, फिर भगवान का संबंध जुड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे से भगवान हमको जो अंदर से प्रेरणा देंगे, उससे हमें पता चलेगा, साक्षात भगवान के उपस्थिति को हम अनुभव कर पाएंगे। शनि शनि होता है ये। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्र का एक काल है, प्रपद्यमानस्य यथाश्रुतः स्यो तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में नव योगेंद्र महाराज निमी को बताते हैं कि भक्ति की पद्धति जो है वो भोजन ग्रहण करने की तरह है, अनुघासम। जैसे जैसे एक एक हम दिवाला कॉल लेते रहते हैं, कॉल सारा सिंपल शब्द है, तो कॉल हम लेते रहते हैं, तो वैसे वैसे क्या होने लगता है, पहली बात कि हमें स्वाद बहुत अच्छा लगता है, हम संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्टि। दूसरी बात, क्योंकि हमने काफी समय से भोजन नहीं लिया हुआ होता है, थोड़ी कमजोरी हो जाती है, तो जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पुष्टि पोषण भी हो जाता है शरीर में। तीसरी बात, जो भूख लगी हुई होती है वो भी मिट जाती है, क्षुद अपाय। तो ठीक उसी, और ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, त्रिशा एक काल है। उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भक्तों के संग में आकर कथा सुनते हैं, विग्रहों का दर्शन करते हैं आदि, तो क्या होता है, तीन चीजें एक साथ होने लगती हैं, और वो क्या है, भक्ति ही, भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण बढ़ने लगता है धीरे धीरे। दूसरी बात क्या है, ईश पर ईश अनुभव है, भगवान की उपस्थिति को हमारे जीवन में अनुभव करना शुरू करते हैं। और तीसरी बात, अन्यत्र विरक्ति, कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी कुछ है उससे विरक्ति या वैराग्य की भावना भी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो ईश्वर का अनुभव है, ये किस प्रकार का अनुभव है, परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है और उनकी उपस्थिति महसूस होती है, हम जान सकते हैं कि हृदय से भगवान हमसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, साक्षात अनुभव होने लगता है, और खुद ब खुद ये वैराग्य का, वैराग्य की अनुभूति भी होती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम हमारे हृदय को भजन क्रिया से स्वच्छ करते रहेंगे, वैसे वैसे भगवान की आवाज, भगवान की बोली हमें सुनाई पड़ेगी, अन्यथा नहीं। अन्यथा हम आएंगे, दर्शन करेंगे, इसको प्रतिमा समझकर चले जाएंगे, या भगवान है समझकर चले भी गए, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब हम ऐसे शुद्ध हृदय से भगवान का दर्शन करते हैं, तो वास्तव में फिर भगवान से हृदय में संपर्क स्थापित हो जाता है। ये होता है गुरु का कार्य। वास्तव में गुरु का कार्य क्या है, जीव को परमात्मा से मिला देना, ملانا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں, ملانا مطلب کہ سمپرک کرا دینا جیو کا بھگوان کے ساتھ. اور اس پرکار سے جیو اپنے بھوتک یاترا کو سماپت کرنے کی تیاری میں ہوتا ہے. ابھی ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہیں تو اس بھوتک جنگل روپی بھوتک جگت میں ہمارے بھرمن کو سماپت کرنے کی تیاری میں ہم ہیں, اور ہمارا دھیے ہونا چاہیے اسی جیون میں سماپت کرنا ہے اس بھرمن کو. بہت ہو گیا, جنگل میں بہت گھوم لیا, بہت پھٹک گئے, ادھر 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 پھٹک گئے, ابھی ہمیں اس یاترا کو سماپت کر کے ہماری اصلی یاترا میں جانا ہے, بھگوان کے دھام میں ہمیں وہاں پہنچنا ہے جہاں بھگوان راہ دیکھ رہے ہیں, بلا رہے ہیں آؤ آؤ آؤ, ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے, بس پہنچ جائیں گے. آپ کو بھی جانا ہے تو ایک ساتھ میں رہنا ہے, نہیں تو بھوتک جنگل بہت آسانی سے ویکتی بھٹک سکتا ہے بھکتی مارگ سے. جنگل میں سب لوگ ساتھ میں رہیں گے تو سب کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور سب لوگ صحیح دشا میں چلیں گے. اگر کوئی آگے رہ جائے, کوئی پیچھے رہ جائے, کوئی ادھر ادھر بھٹک گیا تو سمبھاونا یہ ہے کہ وہ کہیں اور دوسری دشا میں چلے جائے گا, کھو جائے گا. اس لیے بھکتوں کو چاہیے کہ وہ سب اس یاترا کے دوران سب ساتھ میں رہیں, اور ایک بھی کوئی بھکت ادھر ادھر جائے کہ کھلانا چاہیے واپس. جیسے کوئی یاترا میں جنگل کے بھیتر جاتے ہوئے کوئی ایک ویکتی بھی بھٹک جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو کھینچ لیں گے, وہ راستہ نہیں یہاں پہ چلنا ہے ہمیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھکت تھوڑا بہت مایا کا شکار ہونے جا رہا ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے, پربھو آئیے واپس, وہ راستہ ایسے نہیں ہے, راستہ یہاں پر ہے, اس راستے میں چلے آئیے. وہ راستہ جنگل میں اور بھی اندر بھیتر لے جائے گا آپ کو, ہمیں جنگل سے باہر جانا, راستہ یہاں پر ہے. راستہ ایک ہی ہے واسطو میں. پربھوپاد جی بتاتے ہیں, مم ورتمان ورتنتے منشیہ پارتھ سروشہ یہ یتھا مام پرپدیتے تام ستھیو بھجامی ہم. کرشن کے اس بھگوت گیتا کے شلوک کے اوپر پربھوپاد جی کہتے ہیں کہ واسطو میں جب کرشن کہتے ہیں کہ سارے پرانی میرے پتھ میں چلتے ہیں, مم ورتمان ورتنتے منشیہ پارتھ سروشہ, تو بھگوان کہنا چاہتے ہیں کہ پتھ ایک ہے, فرق کیول یہ ہے کہ تھوڑے لوگ میری اور آ رہے ہیں اور تھوڑے لوگ میرے سے دور جا رہے ہیں, بس فرق اتنا ہی ہے. اور تیسرے شرینی کے لوگ ہیں جو بس بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا نہیں چلے ادھر جانا ادھر جانا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ہمیں درد نشچے کر کے ایک راستہ پکڑنا ہے, ایک دشا پکڑنی ہے, وہ ہے کرشن کی اور, مایا کی اور نہیں. تو جب کوئی بھکت تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو یاد دلانا چاہیے, ارے پربھو بھگوان کی بات تو سنائی نہیں دے رہی, دیکھو بلا رہے ہیں, دیکھو آ کے دیکھو بلا رہے ہیں, چلو چلو چلو, ہاں 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 میں بھول گیا, دھنیواد مجھے مدد کیا. لیکن کہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے بھکت کو بلانے جا رہے, پربھو آپ سنیما دیکھنے جا رہے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہے, چلو جنگل میں پھر سے مٹک جائیں گے. اور دوسرا بھکت کہے, ارے بھائی کیا خرابی ہے, ایک بار دیکھا تم بھی چلو نا. اچھا اتنا خراب نہیں ہے, نہیں نہیں ایک بار کرنے میں کیا خرابی ہے, چلو نا اور ہم بھی چلے جاتے ہیں, چلو ایک بار کرنے میں کیا, کبھی ایسا نہ ہو جائے. اس لیے ہمیں بہت سدھڑ رہنا چاہیے, بھکتوں کو ایک دوسرے کو پکڑ کے رہنا چاہیے. ایک بار ایک بھکت نے پربھوپاد جی سے کہا, پربھوپاد جی یہ بھوتک بندھن سے نکلنا بہت مشکل لگ رہا ہے, یہ سنسار کا آکرشن اتنا تیور ہے کہ ہمیں تو نہیں لگتا کہ اس جنم میں ہوگا ہمارے لیے, ہمارے لیے تو اسمبھو ہے, ہم لوگ اتنے پاپی ہیں کہ ہمارے لیے وہ سمبھو نہیں ہے. تو پربھوپاد جی نے کہا کہ وہ میری دھوتی پکڑو, میرا وقت پکڑو, بس میں لے جاؤں گا, میں جاؤں, اور میں تو جا رہا ہوں نا, آپ تو جائیں گے پربھو, بس میرے کپڑے پکڑ کے رکھو. جیسے بچہ اپنے ماتا پتا کے کپڑے پکڑ کے رکھ لیتا ہے اور جہاں ماتا پتا جاتے ہیں وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے, उसी प्रकार से हमें बस प्रभुपाद जी के चरणों में रह के उनके कपड़े पकड़ के रखना है। इसका मतलब क्या? उनके आदेशों का पालन करना है। बस इतना करेंगे तो प्रभुपाद ले जाएंगे। एक बार प्रभुपाद कह रहे थे कि जब तक आप 100% कृष्ण भावना भावित नहीं होते, आप गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। फिर उन्होंने भक्तों के चेहरे देखे, सब का चेहरा गिर गया था। प्रभुपाद जी 100% कृष्ण भावना भावित मतलब एक भी भौतिक विचार नहीं, कैसे होगा? हमारे संभव नहीं है। ठीक है, 90%, 90% कहाँ से होगा, कहाँ से होगा? फिर भी चलो 80%। प्रभुपाद जी 80% ही बहुत है। ठीक है, फाइनल 70%। चलो फिर धोती ऐसे अपना कपड़ा ऐसे रख के चले गए। तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत मौका दिया, चलो 70% तो हम कर ले। जैसे विद्यार्थी के लिए साधारण से अगर पास होने के लिए मार्क 35 हो और कोई विद्यार्थी को 35 नहीं मिल रहे हैं, या कि अध्यापक से कहे मुझे तो नहीं लगता कि मुझे 35 मिलने वाले हैं, तो मुझे केवल एक नंबर मिलेगा, एक मार्क मिलेगा। एक मार्क से नहीं हो, कितना 35 मिलने चाहिए। 35 कहाँ से होगा? ठीक है 30 तो कम से कम होना चाहिए। 30 से मुश्किल है गुरुजी। 25 20, ठीक है 20 कम से कम होना है। 20 होगा तो पास करा दूंगा। चलो हालांकि 35 है पास मार्क, लेकिन तुम्हें 20, चलो मैं पास करा दूंगा, लेकिन 20 तो मिलना चाहिए। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैसे तो पास होने के लिए मार्क तो 100 है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं चलो 70% तो करो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ढीले होना है। चलो अभी प्रभुपाद ने 30% छूट दे दिया ना, अभी आराम करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो हमें एक मार्क भी नहीं मिलेगा, 1% 5% भी नहीं हो पाएगा। तो इतना अच्छा मौका है हमें मिला है। हमें अभी भक्तों को चाहिए कि बहुत ही प्रेम से, सहयोग की भावना से एक होकर, एकजुट होकर चले हम भगवान की ओर, कृष्ण की ओर, एक दूसरे को पकड़ते हुए। एक को पकड़ेंगे तो उसके लिए लाभ होगा, हमारे लिए भी लाभ होगा। वो भटक जाए तो हम पकड़ लेंगे, हम भटक जाए तो वो पकड़ लेंगे। बहुत सुरक्षित मार्ग है। भक्तों का आश्रय लेकर ऐसे हमें कृष्ण की ओर चलते रहना चाहिए और धीरे 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 से। अरे सुनाई दे रही है बांसुरी? हाँ अब सुनाई दे रही। आगे चलते 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 एक दिन हम सुन पाएंगे। जब भौतिक दुनिया की आवाज को नहीं सुनाई देगी ना, उस समय कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई देगी। जब तक दुनिया की आवाज सुनाई पड़ रही है, अरे चलो टीवी खोलो ना, चलो सिनेमा देखो ना, चलो ये भोग करो ना, वो भोग करो, तब तक बांसुरी की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे भक्तों के संग भजन क्रिया करने से फिर ये संभव हो जाए। तो हमेशा हमें याद रखना है, कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ज्यादा देर उनको रुक पाना नहीं है। कृष्ण बहुत धन्यवाद, हम आपके इतने आभारी हैं कि अनादि काल से आप मेरे लिए केवल खड़े हैं, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया कि इस जन्म में, लेकिन मैं आऊंगा, आऊंगा, जरूर आऊंगा। ये दृढ़ निश्चय हम सबको करना है और अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना है। इस जीवन में कबूल है ऐसे दृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत हो। कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ संपन्न हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ राधा विनोद जी है, राधा राधा विनोद खड़े हैं नंद महाराज प्रभु और यशोदामयी माता जी की सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो आप दोनों को भी बुला रहे हैं, बांसुरी की आवाज सब फिर अभी आज यहाँ हम बैठे हैं तो हम सबको बुला रहे हैं राधा जी, आओ 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 मेरे पास। ऐसे ही हर घर में सेवा होनी चाहिए, भले हमारे पास विग्रह न हो, चित्र तो होने चाहिए। और ऐसे ही हमें समझना चाहिए, चित्र और विग्रह में एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। तो अपने घर में भी हम रोज भगवान का दर्शन करके यही बात को, इसी बात को याद रखना हमें चाहिए। कृष्ण बुला रहे बुला रहे बुला रहे, हमें जाना है हमें जाना है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो जान लेना है कि हम लोग केवल 5% में हैं, या 10 में हैं, 15 में हैं। हमें अभी बहुत कुछ करना है। प्रभुपाद के कहने का ये तात्पर्य ये था कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मन जो है इतना चंचल है, इतने भौतिक इच्छाएं हैं, इतनी आकर्षण है भौतिक संसार के प्रति, तो हमारे लिए तो संभव नहीं, चलो छोड़ दो भक्ति को, जब होना ही नहीं है तो क्यों अपना समय बर्बाद करना। ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, चिंता नहीं करो, भगवान बड़े कृपालु है, आप अगर बहुत ही हृदय से प्रयास करोगे तो वो अवश्य ले जाएंगे साथ में, अवश्य रक्ष दे कृष्णा। महाप्रभु कहते चेतन चरिता, अवश्य कृष्ण रक्षा करेंगे, चिंता नहीं करो। लेकिन हमारी ओर से हमें भी कुछ करना है ना, कुछ तो करके दिखाना है। जैसे कल परसों हम गोकुल धाम में भक्तों से चर्चा कर रहे थे, कोई भक्त पूछ रहे थे कि जब हम जप करते हैं तो नींद आ जाती है तो क्या करना चाहिए। हमने उत्तर ये दिया था कि अगर कोई शत्रु आए, जैसे योद्धा है, और कोई शत्रु आए तलवार लेकर हाथ में, जैसे ही शत्रु आए तुरंत हम दंडवत हो गए, उनके उसमें शरण में आ गए, तो फिर आगे क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं। अरे शत्रु तलवार लेकर आए, कुछ तो करना चाहिए, कम से कम तलवार निकालना तो चाहिए दिखाने के लिए। अरे युद्ध करने का नाटक भी तो कम से कम करना, कुछ तो करना चाहिए ना। अगर जैसे शत्रु सामने है तुरंत दंडवत कर लिया तो फिर क्या होगा, उसके वश में आएंगे ही। उसी प्रकार हम जप करने बैठे हैं, शत्रु आ गए। कौन है शत्रु? निद्रा देवी आ गए, तुरंत शरणागत हो गए, दंडवत प्रणाम निद्रा देवी, हम आपको स्वीकार करते हैं, चलो सो गए जप में। अरे कुछ तो करना चाहिए, विरोध करना चाहिए ना, कुछ तो संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष नहीं करेंगे, जैसे नींद आई आई तो ठीक है, कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया, युद्ध नहीं किया, युद्ध तो करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। नींद आ रही है, चलो फिर भी हम जप करेंगे। तो ऐसा करके धीरे धीरे से भगवान कृपा करेगा। अरे ये बेचारा कब से संघर्ष कर रहा है, कुछ तो कृपा देना चाहिए, चलो कम से कम कृष्ण बोले तो राधा रानी तो बोलेंगी, चलो भी देखो कृष्ण, ये देखो कैसे संघर्ष कर रहा है बेचारा, सबसे कुछ तो करो इसके लिए। तो कृष्ण ठीक है, कर लेंगे, चलो ये हमारा स्थान है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान को कुछ तो दिखाना है कि हम कुछ तो कर रहे हैं। ज्यादा हमसे जितना होता है पूरा प्रयास हमें करना चाहिए, बाकी भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। भगवान हमारा हृदय का प्रयास देखना चाहते हैं, हृदय से जो प्रयास हम करते हैं। तो ये चुटकुला हम गोकुला में भी सुना रहे थे, जो प्रभुपाद ने सुनाया था कि एक बार एक विद्यार्थी था जो इतिहास की परीक्षा के लिए बैठा था, और परीक्षा में प्रश्न एक था इतिहास की परीक्षा में कि राजा हरिद्वार बस्था के राज्य के बारे में बोलो। अभी बेचारे विद्यार्थी भ्रमित हो गया कि राजा हरिद्वार बस्था का नाम ही कभी सुना नहीं था आज तक जीवन में, तो उसके राज्य के बारे में क्या लिखेंगे। और समय तो था, थोड़ी परीक्षा मिली है, तो विद्यार्थी ने सोचा समय तो है, क्यों ना लिख दें कुछ, फिर कुछ मालूम नहीं तो क्या लिखेंगे। तो उसने उपाय सोचा, उसने पांच पन्ने आगे पीछे मतलब दस पन्ने लिख दिए। क्या लिखा? शुद्ध बकवास। शुद्ध मतलब बिना मिलावट का बकवास। एक भी शब्द उसमें सही नहीं था, एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिसका कोई मतलब हो। अक्षरों को बस इधर उधर ऐसे वैसे जोड़कर शब्द बनाए, उल्टा सुलटा जो है जैसे मन में आया वैसे कर दिया और ऐसे दस पन्ने भर दिए। और फिर अध्यापक ने जब परीक्षा का पेपर देखा, जब राजा हरिद्वार बस का प्रश्न आया कि हाँ चलो देखते हैं विद्यार्थी क्या लिखता है हरिद्वार बस के बारे में, देखने का, ये क्या है? एक भी शब्द मतलब नहीं, अल्ला गुल्ला गुल्ला कुछ भी ऐसे लिखा हुआ, क्या है? फिर एक पन्ना नहीं, दो पन्ना नहीं, तीन नहीं, पांच, दस पन्ने ऐसे भर दिए। उनको बड़ा गुस्सा आया, पूरा काट के शून्य देने वाले थे। फिर सोचने लगे ये भी बड़े बुद्धि का कार्य है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसने बेचारे ने दस पन्ने लिखने का कष्ट लिया, बहुत हाथ से दुखने लगता है ना, दर्द करने लगता है। दस पन्ने लिखना बोले इतना आसान नहीं है, कम से कम इस बेचारे ने दस पन्ना पन्ने तो लिखे हैं। और दूसरी बात, बकवास पूरा शुद्ध बकवास लिखने के लिए भी बुद्धि चाहिए ना। अगर गलती से कोई सही शब्द भी आ जाता है बीच में, लेकिन इसने बुद्धि का प्रयोग करके दस पेज लिखा है बकवास का। इसलिए उन्होंने प्रसन्न हो गया, अध्यापक की पास कर दिया उसको। इसलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमें क्या पता कि वैष्णवता क्या है, भक्ति क्या है। हम जो कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा बैठ के डॉक्टरी का सामान लेकर वो ऐसे ऐसे करने लगता है, हाँ, बड़े लोग हंसते हैं। उसी प्रकार से गोलोक वृंदावन में जो भक्त है हमारी भक्ति देखकर हंस रहे हैं, ये देखो क्या, एक हाथ में जपमाल दूसरे हाथ में अखबार है ना, ये क्या इनकी भक्ति चल रही है, तरह तरह की चीजें चल रही है। तो गोलोक वृंदावन बैठे भक्त देख, अरे हंसते, अरे क्या भक्ति इनकी है। लेकिन फिर भी जैसे बड़े लोग बच्चे के ऊपर कृपा करते, प्रोत्साहन देते, करते रहो करते रहो, वो लोग भी हमें प्रोत्साहन दे रहे, चलो करो कुछ तो करो, कर रहे हो ना, चलो धीरे 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 से हो जाएगा। वो कृपा करते हैं, उनकी कृपा से हम अभिलाषी हैं। तो कर जब वो कृपा करेंगे, देखेंगे कुछ तो कर रहे हैं, कृष्ण भी देखेंगे, राधा रानी भी देखेंगी, चलो कुछ तो ये लोग कर रहे हैं ना। लेकिन हमारी ओर से हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ तो करेंगे तो कृपा मिल जाएगी। नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमें तो पूरी तरह से भक्ति करनी है, हृदय लगाकर भक्ति करनी है। हमें तो 100% चाहिए मार्ग, हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, अभी तक हम वैष्णव बने नहीं है, वैष्णव बनने के तैयारी में है। जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनने की तैयारी में, उसका असली जीवन कब चालू हो जाएगा? डॉक्टर बनने के बाद। फिर भी नौसुखिया है वो, फिर भी आगे चल के उसको बहुत कुछ सीखना है। अभी तो नया नया ताजा डॉक्टर बना है ना, अभी तो आगे चल के बहुत कुछ उसको सीखना है। उसी प्रकार से हम जब गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे तब असली चीज शुरू होगी, अभी तो केवल तैयारी चल रही है। लेकिन तैयारी अच्छे नहीं करेंगे तो वहां जाएंगे कैसे? और कोई प्रश्न है, टीका, टिप्पणी? अभी आप बताइए, आज के प्रवचन का सार क्या है, महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट क्या थे? बांसुरियों की धुन सुनने की कोशिश करनी चाहिए। किनकी? हाँ, ये बनना चाहिए भगवान कृष्ण की, सब दुनिया की नहीं। लेकिन कैसे सुनाई पड़ सकते हैं? चैनल सही होना चाहिए। मतलब क्या? भक्ति के कार्यों में हमें रत रहना चाहिए। किस वातावरण में? भक्तों के संग में। और पॉइंट बताइए। हाँ, सब एक साथ मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। क्यों? भटक न जाए। कौन भटक न जाए? हम भी और दूसरे भी। इसलिए एक मिल एक एक होकर हमें रहना है। और क्या पॉइंट? भगवान के चरणों चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से ऐसा आश्रय लेके? कि हे भगवान, कई जन्मों से अनंत कोटि जन्मों से हम आपको छोड़ चुके हैं, आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लिए, लेकिन अब अभी हम यहाँ आपके चरणों में आए हैं, अब छोड़ के नहीं जाएंगे। किसकी तरह? एक पंछी की तरह। इधर उधर जाके आखिर में जाऊंगा कहाँ? उसी प्रकार से कृष्ण की छोड़ कर जाएंगे क्या? भक्ति में आए, फिर भक्ति में कोई समस्या हुई, चले गए छोड़कर, कहाँ जाएंगे? आने को है वापस यहीं पर। तो क्यों छोड़े? क्यों समय क्यों बर्बाद करें? नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा पकड़ के रखना चाहिए भगवान के चरण कमलों को। और क्या पॉइंट? हम अभी तक वैष्णव नहीं है। एक दृष्टि से वैष्णव है, परंतु वास्तव में वैष्णव नहीं है। क्यों? वैष्णव बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि वैष्णव का मतलब क्या है, प्रयास कर रहे हैं। और जब दूसरा कोई भक्त माया में जा रहा हो तो हमें उसे प्रेम से बड़े वापस खींचना चाहिए, और कहीं ऐसा न हो कि हमें उसे माया से दूर निकाल कर भक्ति में लाने के बजाय वो हमें भक्ति से माया में ले जाए, कहीं ऐसा न हो। भक्ति प्रसाद सेवन की जैसे है। क्या चीज है वो? दोनों में समान है? तुष्टि पुष्टि क्षुत अपाय, मतलब संतुष्टि जो स्वाद से मिलता है, पुष्टि पोषण जो आहार ग्रहण करने से मिलता है, और क्षुत अपाय भूख मिट जाती है पेट भरते भरते। उसी प्रकार से तीन चीजें क्या होती है? भगवान का शरण ग्रहण करने से प्रपद्य मानस्य यथाश्नतः, प्रेम भक्ति पहली बात, दूसरी बात भगवान का अनुभव, परेशानुभव पर ईश अनुभव भगवान का अनुभव, और तीसरा विरक्ति अन्यत्र भगवान से भिन्न किसी वस्तु का के प्रति विरक्ति। और कोई बात? प्रभुपाद जी की धोती पकड़ के चलना चाहिए, इसका मतलब उपदेशों का आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, किसी भी हालत में भगवान के चरण कमलों को छोड़ना नहीं चाहिए, निद्रा देवी से युद्ध करना चाहिए जब जब में आती है, ऐसे ही बस दंडवत नहीं करना चाहिए, पूरा सरेंडर नहीं हो जाना चाहिए, संघर्ष करना ही चाहिए। अगर भगवान के शरण नहीं भी लेंगे फिर भी संघर्ष करना है, बल्कि संघर्ष तो और बहुत कड़ा होगा उस समय। गोलोक वृंदावन से गोलोक वृंदावन के शुद्ध भक्त जब देखेंगे कि अरे ये लोग क्या भक्ति कर रहे हैं, हंसते हैं, लेकिन किस तरह से हंसते हैं, अच्छे हृदय से, जैसे मजाक करते हैं ऐसा, उस तरह की हंसी नहीं। वो देखते हैं कि जैसे बड़े बच्चे बड़े बड़े जो है बच्चों को देखते जैसे वो कर रहे हैं, हंसते हैं, लेकिन वो प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उनको और अच्छा बनाना चाहते हैं उसमें। तो गोलोक वृंदावन के निवासियों की कृपा हमें चाहिए, भगवान भेजते हैं ऐसे शुद्ध भक्तों को उनके धाम से यहाँ भौतिक जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए। भक्ति में बल और बुद्धि दोनों का उपयोग होना चाहिए। जैसे हम जप के समय हम कहीं बैठे हैं, पैर फैला के बैठे हैं, टीढ़ियों करके बैठे हैं, तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि ऐसे करेंगे तो नींद आनी ही आनी है, तो सही से बैठना चाहिए। तो केवल प्रयास नहीं, प्रयास के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी होना चाहिए। भक्त को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। और एक पॉइंट ये था कि भगवान अनादि काल से खड़े हैं, बांसुरी बजाते 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 हमारे लिए राह देख रहे हैं, कब ये बच्चा ये जीव आएगा आएगा आएगा, और हम क्या बोलते हैं भगवान को, अरे अब नहीं, थोड़ी देर, अभी तो काम कहाँ समाप्त हुआ, अभी और थोड़ी देर, जितना वो कमी, अभी आएंगे, अभी अभी आएंगे आपसे। लेकिन ऐसे समय बीत जाता है, लाखों जीवन जन्म बीत जाते हैं, अभी भगवान को खड़ा ही रखा है हमने। भगवान की मुरली से भगवान क्यों मुरली बजाते हैं, भक्तों को आकर्षित करने के लिए। तो वृंदावन में जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो कौन आकर्षित होते थे, गोपियां और सारे समस्त ब्रजवासी, उदाहरणार्थ पशु पक्षी पेड़ पौध सब आकर्षित हो जाते थे। तो हम लोग क्यों नहीं हो रहे हैं आकर्षित भगवान के बांसुरी से, क्योंकि दूसरी ध्वनियां सब सुनाई पड़ रही हैं हमको, है ना, संसार की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, संसार के जो चमक धमक है उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए भगवान की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। परंतु भगवान की आवाज है ना इसमें, किसमें, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता, ये भगवान की आवाज है, इसमें और भगवान की मुरली में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ब्राह्मण दीक्षा कैसे दी आपको पता है, मुरली से बांसुरी बजाकर। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, बांसुरी की ध्वनि जो है वो ब्रह्मा जी के कर्णों में प्रवेश किए, कैसे, ओमकार के रूप में, और ओमकार के रूप में उनके कर्णों में प्रवेश करके ब्रह्मा जी के मुख से क्या निकला, वेद निकले। तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे पहले दीक्षित ब्राह्मण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको डायरेक्ट साक्षात दीक्षा दिया बांसुरी के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र और बांसुरी की ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से गीता भागवत का जो संदेश है इसमें भी कोई अंतर नहीं है, ये सब अभिन्न है। इसलिए भले हम भगवान की बांसुरी को साक्षात नहीं सुन पाए, लेकिन गीता भागवत का संदेश तो सुन सकते हैं, हम हरि नाम तो सुन सकते हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो ये भगवान के बांसुरी के सुनने के बराबर है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम ये चीजें बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से, तीव्रता से करना चाहिए, ठीक है। भगवान का रास्ता एक ही है, کوئی لوگ بھگوان کی اور جاتے ہیں، کوئی لوگ بھگوان کو پیٹھ دکھا کر دوسری اور جاتے ہیں، راستہ تو ایک ہے، تھوڑے لوگ کبھی ادھر کبھی ادھر. ہم کون سے شرینی میں ہیں؟ کتنے لوگ بھگوان کی اور جانے والے شرینی میں ہیں؟ آپ سب ہیں، آپ سب بھگوان کی اور جا رہے ہیں. اور سنسار میں رمن کرنے والے لوگ کس دشا میں جا رہے ہیں؟ اس دشا میں جا رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی بھکتی میں جب اتنی پریپکوتا نہیں ہوتی ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے، آگے چلتے ہیں پھر ارے دو قدم پیچھے بھی جائیں، پھر تین قدم آگے، پھر دو قدم پیچھے، پھر آگے پیچھے، آگے پیچھے ہوتا ہے. تو ہچکچانا نہیں، ابھی پورے آگے جانا ہے، بریک نہیں دبانا ہے ابھی. ڈنڈا کس سے بنتا ہے؟ بانس سے بنتا ہے. اور بھگوان کی بانسری کس سے بنتی ہے؟ تو جو بھگوان کی بانسری نہیں سننا چاہتا ہے اس کے لیے ڈنڈا ہے ہی، وہی ہے یہ جنم مرتیو جرا ویادی دکھ دوشانو درشن، مایا کی لاٹھی تو کھانا ہی پڑے گا اس کو، اوشیہ کھائے گا. بھگوان تو ڈنڈا دے ہی رہے ہیں مایا کے مادھیم سے، لیکن درباگ یہ ہے کہ یہاں جیووں کو ڈنڈا کھا کھا کے بہت اچھا لگتا ہے، ڈنڈا کھانا چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو مایا کے ڈنڈے کھاتے رہتے ہیں. ایک پربھوپاد جی جب امریکہ کے ایک وشو ودیالیہ میں پروچن دے رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں نمن شرینی کی یونی سے جانے کو بچنا چاہیے، نہیں تو آتما ہم کتے کا شریر مل گیا تو بھگوان کی پراپتی نہیں ہوگی. تو ایک ودیالیہ کہنے لگا کہ کتے کی یونی ملنے میں کیا خراب ہے؟ تو پربھوپاد نے کہا آپ کتا بننا چاہتے ہو؟ ہاں اگر بننا ہے تو بنیں گے، اس میں کیا ہے. تو پربھوپاد کہو تو آپ کی اچھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، بنو گے، آپ سنتوشت رہو اس سے. کہنے کا مطلب ہے کہ ڈنڈا کھانا بھی لوگ پسند کرتے ہیں، وہ ڈنڈا بھی ہم کہیں گے کہ ڈنڈا ملیں گے مایا کے، ہاں ملنے دو نا، کیا ہے، تو پھر ٹھیک ہے رہو. بھگوان کو بھی سوتنترتا میں دخل اندازی نہیں کرتے ہیں، زبردستی نہیں کرتے. کسی کو یہاں رہنا ہے، مایا کے دھکے کھانے ہیں، کھاتا رہے گا، ایک دن ہوش ٹھکانے آ جائے گا، انیک جنموں کے بعد پھر ہاتھ جوڑ کر بھگوان کے سامنے آئے گا، پھر شرن گرہن کرے گا. ہمیں اس دن کی پرتیکشا نہیں کرنی، ابھی کر لینا چاہیے. توبہ توبہ کر کے بھگوان کے شرن بہت ہو گیا، ابھی ہم آ گئے ہیں آپ کے شرن. پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جٹھرے شینم ایہ سنسار بہو دستارے کرپیا پارے پاہی مرارے. کہ ہے مراری ابھی ہماری رکشا کیجیے اور اس بھینکر بھو ساگر سے پار کر دیجیے جس میں بارمبار جنم ہے، بارمبار مرن ہے. تو میں اس بھاونا سے ٹھاکر جی کے شرن میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہرے کرشن ہرے کرشن 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے. تو نند مہاراج پربھو اور یشودا میں ماتا جی کو دھنیواد ہے کہ انہوں نے یہاں اچھے ستسنگ کی ویوستھا کی، اور یہاں لگ رہا ہے کہ بھگوان کو 56 بھوگ نہیں، 108 طرح کے بھوگ لگے ہوں گے شاید. تو رادھا ونود کے چرنوں میں ہم سب پرارتھنا کریں کہ وہ ہم سب کو ان کے چرنوں میں سدیو دھولی کے کن کے روپ میں رکھیں، بس یہ ہمارے لیے پریاپت ہے. ہرے کرشن. تو 5 منٹ کیرتن کریں گے، پھر آرتی ہونی ہے، ٹھیک.
ठीक है।